हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जब से वेद को शिवांशा के खिलाफ वो तस्वीरें मिली थीं, तब से वो उस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। इस बीच शिवांशा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मजबूरी में वेद को उसे हॉस्पिटल लाना पड़ा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने वेद को बताया कि शिवांशा का बुखार उतर नहीं रहा है। शिवांशा बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही थी, इसका मतलब साफ था वो अंदर ही अंदर किसी चीज से जूझ रही थी और उसे इससे बाहर निकालना जरूरी था। डॉक्टर ने इस मामले में वेद की हेल्प लेने की सोची। मजबूरी में वेद शिवांशा के कमरे के अंदर जा रहा था। उसने इशारे से वहां मौजूद नर्स को बाहर भेज दिया था। अब कमरे में सिर्फ वेद और शिवांशा ही बचे हुए थे। वेद ने गहरी सांस ली और फिर शिवांशा के पास में रखी हुई चेयर पर बैठ गया था। वो धीरे से बड़बड़ाकर बोला, मैंने इस लड़की को अपने घर पर लाकर बेवजह मुसीबत मोल ले ली है। मैं इसे जंगल में ही मार देता, लेकिन शायद इसकी वो कोई चाल रही होगी जो मुझे जानबूझकर राजावत हाउस में अपने भाई का नाम लेकर ले जा रही थी। पर इसका भाई तो सच में एग्जिस्ट करता है। वेद अपने ख्यालों में खोया हुआ खुद से बातें कर रहा था, तभी शिवांशा बेहोशी में चिल्लाते हुए बोली, दूर रहो मुझसे। इसी के साथ वेद का ध्यान टूटा। उसने एक नज़र शिवांशा की तरफ देखा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं और भौहें सिकुड़ी हुई थीं। वेद के दिल में शिवांशा के लिए कितनी भी नफरत क्यों ना हो, लेकिन वो उसे इस हाल में भी नहीं देखना चाहता था। वेद जल्दी से खड़ा हुआ और उसने शिवांशा के बालों को काफी प्यार से सहलाते हुए कहा, होश में आओ, जो तुम देख रही हो वो सच नहीं है। वो वक्त बीत गया है। मुझे नहीं पता कि इस वक्त तुम अपने सपनों में क्या देख रही हो, क्या महसूस कर रही हो, पर असल जिंदगी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जो किया उसके बाद मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूँ, पर वादा करता हूँ कि अंकुश से तुम्हें बचा कर रखूंगा। मेरे होते हुए तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी बच्चा, प्लीज खड़ी हो जाओ। वेद के लिए शिवांशा किसी बच्ची की तरह ही थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि कब वो शिवांशा की तकलीफों को खुद महसूस करने लगता था, कब वो उसे बच्चा कहकर बुलाने लगता था। शिवांशा के कोई रिस्पांस नहीं करने पर वेद थोड़ा परेशान हो गया था। उसने शिवांशा का हाथ पकड़ा और उसे काफी प्यार से अपने दूसरे हाथ से सहलाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अपने गुस्से में बहुत रूढ़ हो गया था। शायद मुझे कल रात ही ध्यान दे लेना चाहिए था जब तुम जोर से चिल्लाकर उठी थी। प्रॉमिस करता हूँ आगे से कभी तुम्हें लेकर लापरवाही नहीं करूंगा। तुम्हें दूसरे कमरे में सोने के लिए भी नहीं भेजूंगा। चाहे तुमसे कितना भी नाराज क्यों ना हो जाऊं, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी और सिक्योरिटी मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। बच्चा, नाउ गेट अप। मैंने आज तक किसी को मनाने के लिए इतनी लाइंस नहीं बोली हैं। मैं दिल से सॉरी फील कर रहा हूँ, प्लीज खड़ी हो जाओ। वही सपने में न जाने कैसे शिवांशा के कानों में वेद की आवाज पड़ रही थी। उसने नींद में ही सही पर पूरी हिम्मत दिखाकर अंकुश को दूर धकेल दिया था। शिवांशा एक झटके में जल्दी से उठी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस कांप रही थी। अपने सामने वेद को देखकर शिवांशा उसके कमर के इर्द गिर्द हाथ डालकर चिपक गई थी। शिवांशा के होश में आते ही वेद ने राहत की सांस ली। वो उसकी पीठ को धीरे धीरे सहला रहा था। वेद ने धीमी आवाज में कहा, घबराओ मत, सब ठीक है। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। अगर आपको मेरा चेहरा नहीं पसंद है तो मैं दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए वेद, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू। शिवांशा सुबकते हुए धीमी आवाज में बड़बड़ा रही थी। वो रो रही थी। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम रिलैक्स करो, चलो आराम से लेट जाओ, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। वेद ने शिवांशा को खुद से अलग करने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे शिवांशा ने वेद को कस के पकड़ रखा था। दोनों के बीच का रिश्ता भले ही नफरत भरा क्यों ना रहा हो, लेकिन वेद के पास होने पर शिवांशा को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे दुनिया की हर मुसीबत से बचा लेगा। वही वेद शिवांशा को सहलाते हुए उसे सिक्योर फील करवाने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी वक्त नव्यांशी, आराध्या और अक्षत हॉस्पिटल के अंदर कमरे में आए। उन्होंने वेद और शिवांशा को इस तरह गले लगे हुए देखा तो उन तीनों के चेहरे पर ही मुस्कुराहट आ गई थी। लगता है हम गलत टाइम पर आ गए हैं, पर जो भी हो ये दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। आराध्या ने अपनी हंसी दबाते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, चलो आज इन्हें देखकर तसल्ली तो हुई कि भाई और भाभी के बीच में प्यार भी है। मैंने कभी भाई को इतनी प्यार से किसी को शांत करवाते हुए नहीं देखा। ऐसा करता हूँ, दोनों की एक फोटो ले लेता हूँ। अक्षत एक्साइटेड होकर बोला और अपना मोबाइल निकालने लगा। एक्साइटमेंट में अक्षत ने तेज आवाज में बोला था जिससे वेद का ध्यान टूटा। उसने घूर कर उन तीनों की तरफ देखा। वेद शिवांशा को खुद से अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो उसे छोड़ने का नाम भी नहीं ले रही थी। वही अक्षत ने जब अपना कैमरा ऑन किया और वेद को उन्हें घूरते हुए पाया तो उसने जल्दी से मोबाइल नीचे कर लिया था। मैं बस आपके मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, बाकी आपकी प्राइवेसी में इंटरप्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था भाई, प्लीज ट्रस्ट मी, अक्षत ने हड़बड़ाकर अपनी सफाई देते हुए कहा। अक्षत थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर रहा था, लेकिन नव्यांशी ने बात को संभालते हुए कहा, ठीक है, आप भाभी से बात कीजिए, हम बाद में आ जाएंगे, बस हमें ये बता दीजिए कि इनकी तबीयत सही है ना। वेद ने हाँ में सिर हिलाया। इस वक्त उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि शिवांशा डर के माले उससे अलग नहीं हो रही थी, और वो ऐसा कभी नहीं चाहता था कि उसके भाई बहन उसे किसी लड़की के साथ इस तरह इतना क्लोज देखें, चाहे फिर वो उसकी नाम की पत्नी ही क्यों ना हो। एक्चुअली इसे सपने में कुछ अजीब चीज दिखाई दी थी, इस वजह से डर गई थी ये। तुम लोग बस 5 मिनट वेट करो, मैं बाहर आता हूँ, फिर तुम इससे मिल सकते हो। अक्षत वेद को परेशान करने के लिए कुछ कहना चाहता था, लेकिन नव्यांशी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया था। बाहर आते ही नव्यांशी ने उसे घूर कर देखा और कहा, सोचना भी मत कि तुम भाई को परेशान करोगे, वो हमसे उम्र में इतने बड़े हैं, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए, वो तुम्हारे क्लासमेट नहीं है जो तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो, वो उनकी गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, और गलती हमारी है जो बिना नॉक किए हम अंदर चले गए थे। तुम मुझे डांट क्यों रही हो, मैं भैया को बस ये पूछना चाहता था कि वो हमें सफाई क्यों दे रहे हैं, अपनी ही पत्नी के साथ हैं, फिर वो थोड़ा नर्वस क्यों हो गए थे, अक्षत ने कंधे उचकाकर कहा। इससे पहले कि हॉस्पिटल में नव्यांशी और अक्षत के बीच बहस होती, आराध्या ने उन्हें शांत करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो, अक्षत भाई आज तक सिंगल रहे हैं और अचानक से शिवांशा भाभी के साथ शादी करके आए हैं, तब से उनके रिश्ते को लेकर वो किसी न किसी को एक्सप्लेनेशन देते ही रहते हैं। हमेशा की तरह भाई ने बिना हमारे कुछ कहे ही सब समझ लिया था, हमारी आंखों में जो ऑकवर्डनेस थी वो उन्होंने फील कर ली थी। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहती हूँ, हमें उन्हें थोड़ा प्राइवेट स्पेस देना चाहिए। वही रूम के अंदर वेद शिवांशा को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। वेद ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मेरी माँ तुम्हें कोई खा नहीं रहा है जो इस तरह मुझसे चिपकी हुई हो, तुम्हारी वजह से वो मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि हॉस्पिटल में भी मेरा खुद पर इतना कंट्रोल नहीं है कि मैं अपनी वाइफ के साथ इस तरह हक करके खड़ा हुआ हूँ।
जो काम वेद प्यार से नहीं कर पाया था, उसके डांटने पर शिवांशा जल्दी से घबराकर उससे दूर हो गई थी। उसने मासूमियत से कहा, लेकिन मुझे सच में डर लग रहा है। वेद ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा, ऊपर मेरी आंखों में देखो। वेद के कहने पर शिवांशा ने जल्दी से उसकी हल्की भूरी आंखों के अंदर झांक कर देखा। वेद ने शिवांशा की आंखों में आंखें डालकर इंटेंस वॉइस में कहा, क्या तुम्हें यहाँ कहीं भी आसपास अंकुश राजावत दिखाई दे रहा है? यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, अगर वो यहाँ पर होता तो भी मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं कर सकता था। होश में आओ शिवांशा, तुम्हें अपने ट्रॉमा से बाहर निकलना होगा। आपको कैसे पता कि मैं अंकुश राजावत को ही सपने में देखकर डर रही थी? शिवांशा ने हैरानी से पूछा। क्योंकि उसने जो किया है उसका तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर हुआ है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम साइकाइट्रिस्ट की हेल्प लेकर इन सब से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन नहीं, तुम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हो, वेद उसे समझाते हुए बोला। मैं ठीक हूँ, शिवांशा ने तुरंत अपनी नजरें नीचे करके कहा। वेद ने सार्कास्टिकली सिर हिलाया और बोला, हाँ मुझे दिख रहा है, मैं बाकी लोगों को अंदर बुलाने जा रहा हूँ, प्लीज उनके सामने नॉर्मल बिहेव करना। शिवांशा ने वेद की बात पर हामी भरी और बिस्तर पर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गई थी। वेद बाहर आया और उन सबको शिवांशा से मिलने के लिए अंदर बुला लिया था। आराध्या, अक्षत और नव्यांशी शिवांशा के इर्द गिर्द खड़े हुए थे, तो वही वेद उनसे थोड़ी दूरी पर हाथ बांधकर शिवांशा को ही देख रहा था। वेद ने मन ही मन कहा, न जाने इस बार तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम इतना घबरा रही हो, पहले मुझे लगा था कि तुम मेरी वजह से डर रही हो, लेकिन फिर से ये अंकुश राजावत से जुड़ा हुआ था, अब ये तुम ही बता सकती हो कि तुमने क्या देखा। वेद आराध्या, अक्षत और नव्यांशी के वहां से जाने का इंतजार कर रहा था। आराध्या ने अफसोस भरी लहजे में कहा, वी आर रियली सॉरी भाभी, घर में इतने लोग होने के बावजूद हम आपका ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, आप तीसरी बार बीमार पड़ रही हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बस कभी कभार बुरे सपने मुझे परेशान करते हैं। शिवांशा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, बीमार होने की वजह से उसका चेहरा उतर गया था। नहीं, आराध्या भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, नव्यांशी आराध्या का साथ देते हुए बोली, हम लोगों में ही कमी है जो हम ठीक से आपका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, ना आप हमारे साथ खाना खाती हैं और ना ही हमारा मिलना हो पाता है, लेकिन आज से आई प्रॉमिस कि हम रोज आपसे मिलने आएंगे और हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। हाँ, और मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि टाइम मिलने पर आपको बाहर घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। आई नो वेद भैया को इतना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि उन पर काम का काफी प्रेशर है, लेकिन मुझ पर अभी इतना बर्डन आया नहीं है। आप ठीक हो जाओ फिर हम पूरे उदयपुर में घूमेंगे, अक्षत ने शिवांशा को अच्छा महसूस करवाने के लिए कहा। वेद को दिल ही दिल में तसल्ली हो रही थी कि उसके भाई बहन एक अनजान लड़की को अपनाकर उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अक्षत तो अपना टाइम तक निकालने के लिए तैयार था, जबकि वेद अच्छे से जानता था कि ऑफिस के कामों से फ्री होकर वह अपने पैशन को फॉलो करते हुए कुकिंग सीखने के लिए जाता था। उन लोगों को बातें करते हुए लगभग आधे घंटे हो गए थे। शिवांशा को होश भले ही आ गया हो, लेकिन उसने अभी तक किसी तरह की कोई दवाई नहीं ली थी। उसका शरीर अभी भी बुखार से बुरी तरह तप रहा था। वेद ने उनकी बातों के बीच में दखल देते हुए हल्की सी खांसी ली और फिर उनके पास बढ़ते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब बहुत हो गया, डॉक्टर को इसे ट्रीट भी करना है और तुम लोग घर जाओ, मैं यहाँ पर इसके पास रुकता हूँ। भाई आप अकेले कैसे करोगे, मैं भी आपके साथ रुक जाता हूँ, अक्षत बोला, लेकिन वेद ने साफ मना कर दिया था। वेद के आगे वैसे भी उनकी बहस काम नहीं आती थी। जाने से पहले नव्यांशी ने शिवांशा की तरफ देखकर कहा, अच्छा ठीक है भाभी, आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कहूंगी कि हम कल मिलने आते हैं, आपको ही ठीक होकर जल्द से जल्द घर आना है, फिर मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। शिवांशा ने उन सबको मुस्कुराकर बाय कहा और फिर वो तीनों वहां से चले गए थे। आज पहली बार नव्यांशी ने उससे अच्छे से बात की थी। इतनी देर से वेद को एक ही सवाल परेशान कर रहा था कि आखिर शिवांशा ने अपने सपने में ऐसा क्या देखा था कि उसे इतना तेज बुखार हो गया था। उनके जाते ही शिवांशा ने एक नज़र वेद की तरफ देखा और फिर अपनी नज़रें नीचे कर ली थीं। वेद ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर कहा, अच्छा अब तुम्हें कैसा लग रहा है? काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है। हाँ थोड़ा बहुत दर्द भी है पर दवाई लेने पर ठीक हो जाएगा। वेद ने हाँ में सिर हिलाया और फिर कुछ पल रुक कर कहा, तुम जानती भी हो तुम सपने में बहुत घबरा गई थीं, कल रात भी तो बहुत जोर से चिल्लाई थी, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्या देखा अपने सपने में जिसके बाद तुम इतना घबरा गई थीं। वेद के पूछते ही शिवांशा की आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों के सामने उसका सपना घूमने लगा था जहां अंकुश उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। शिवांशा के चेहरे पर वही डर के भाव उभर आए थे और उसकी आंखों में आंसू थे। वह फिर से उसी ट्रॉमा में खोने लगी थी।